नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव को 1.5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी कुछ जगहों से डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इस दौरान पेंगोंग झील के अपने इलाके में चीन बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन बहुत रफ्तार से इस झील पर एक पुल तैयार कर रहा है। पुल तैयार होते ही झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर की दूरी 200 किलोमीटर से घटकर मात्र 40 से 50 किलोमीटर रह जाएगी। इसका फायदा उठाकर चीन अपनी सेना को कम समय में एलएसी तक पहुंचा सकेगा। लगातार चल रहे तनाव के बीच चीन की ये कोशिश भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, चीन एक तरफ बातचीत का नाटक करता है और दूसरी तरफ एलएसी पर इस आक्रामक तरीके से तैयारी कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस चुनौती को?
आपने सही कहा है, चीन का पक्ष हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। वह बात कुछ करता है और ग्राउंड पर कुछ और करता है। आपको मालूम होगा कि पेंगोंगसो लेक के उत्तरी किनारे पर अप्रैल 2020 के बाद में उसने काफी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूक डिप्लॉयमेंट किया था जो हमारे एलएसी के अपनी तरफ है। जब इसका अपोजिशन किया गया तो चीन शुरू में मानने के लिए तैयार नहीं था और कुछ दिनों के बाद में गलवान की भीषण घटना भी घटी जिसमें हमारे एक कमान अधिकारी के साथ 20 जवानों को जान गंवानी पड़ी और उनकी इस शहादत की प्रोसेस में उन्होंने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भी मार गिराया। इस सब के बावजूद बातचीत का जो भी प्रयास किया गया वो मामला सुलझ नहीं रहा था। इसी बीच भारतीय सेना ने एक अभूतपूर्व काम किया और वह काम था, जबकि सबकी नजरें पेंगोंगसो लेक के उत्तर तरफ केंद्रित थी, भारतीय सेना ने पेंगोंगसो लेक के दक्षिणी किनारे पर कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया। जब इस कब्जा करने की मुहिम चल रही थी तो चीन ने कोशिश की कि वह अपने सैनिकों को वहां पर हमारे पहुंचने के पहले पहुंचा दे, लेकिन वह पूरी तरह असफल हुआ और इसकी वजह पेंगोंगसो लेक पर नॉर्थ और साउथ बैंक के बीच में किसी जोड़ने वाले माध्यम का न होना था। उसको अपने मौजूदा जो कैंटोनमेंट्स थे और वहां पर उसके जो रिसोर्सेस थे उनको कैलाश रेंज पे लाने के लिए तकरीबन 12 घंटे का समय लग गया, लेकिन भारतीय सेना ने एक बहुत बड़े तेजी से आक्रामक रूप अपना करके कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इसके बाद में चीन को मजबूर होना पड़ा, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और उसके तहत मौजूदा स्थिति में पेंगोंगसो लेक के नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सों को वर्तमान स्थिति में से हटाकर पूर्व स्थिति में ले जाया गया। इसके बाद भी एलएसी के ढेर सारे मसले हैं जो बातचीत से कुछ सुलझे हैं और कुछ का सुलझना बाकी है।
जी बिल्कुल।
अब हम आते हैं खासकर इस पुल के बारे में।
जी,
जैसा मैंने आपको बताया कि चीन की ये सामरिक असमर्थता जिसमें वह अपने ट्रूप्स को कैलाश रेंज पर टाइम से नहीं पहुंचा पाया उसको उसने समझा और उसी कमी को पूरा करने के लिए उसने नॉर्थ एंड साउथ बैंक को जोड़ने का काम इस ब्रिज के माध्यम से करने की कवायद शुरू की। वस्तुतः जब तक ये दोनों सिरे जुड़ते नहीं तब तक उसके लिए संभव ही नहीं था कि भारत के ऑफेंसिव तरीके को वह किसी तरह से प्रतिकार कर सके। अब उसने क्या किया है कि हालांकि कहा तो जा रहा है कि वह मौजूदा एलएसी के 25-30 किलोमीटर अपनी तरफ यह कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन आपको पेंगोंगसो लेक की स्थिति भी समझनी पड़ेगी। पेंगोंगसो लेक तकरीबन 134 किलोमीटर लंबा लेक है जिसका 40% हिस्सा भारत में है, 50% चाइना में है और 10% बीच का हिस्सा है जो विवादित है और यह जहां पर ब्रिज बनाया जा रहा है हालांकि मौजूदा समय में तो वह एलएसी के दूसरी तरफ चीन की तरफ है, लेकिन वस्तुतः ये हमारे अक्साई चीन का ही भूभाग है जिसको उसने जबरदस्ती कैप्चर कर रखा हुआ है। और इस ब्रिज को बनाने की प्रोसेस में न उसने कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है और इससे उसकी मंशा क्या है उसको भी स्पष्ट नहीं किया है। बावजूद इसके कि इसकी मंशा वो कहे या न कहे, कुछ चीजें बहुत ही सहज रूप में सामने आ रही हैं। शुरुआती दौर में चीन का प्रयास था कि वो तिब्बत के अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे जिससे वह अपने प्रांतों को जोड़ सके या अपने लोगों का विकास कर सके, लेकिन पिछले गत वर्षों में उसकी कोशिश रही है कि इनके साथ साथ वह एक तरफ तो डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जिसका इस्तेमाल सिविलियंस के साथ साथ मिलिट्री भी कर सके, और कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर एलएसी के पास वह प्योर मिलिट्री पर्पज से कर रहा है जिसमें इस ब्रिज का होना भी शामिल है। अगर यह ब्रिज इसी तरह बना और आगे भी उसने और इस तरह की कोशिश की तो आगे आने वाले समय में हमारे पास कैलाश रेंज या इस तरह के हाई एल्टीट्यूड पे कब्जे करने वाले जो ऑप्शंस थे वो भी सीमित या न के बराबर रह जाएंगे। इसलिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि यह इस ब्रिज के लोकेशन को अपने टारगेटिंग लिस्ट में शामिल करे जिसको समय आने पर एयरफोर्स के माध्यम से या ड्रोन अटैक के माध्यम से या रॉकेट के माध्यम से बर्बाद किया जा सके, क्योंकि जब तक यह ब्रिज चाइना के पास में अवेलेबल रहेगा उसके पास बहुत आसानी से दोनों हिस्सों को जोड़कर अपने ट्रुप्स को पहुंचाकर उसकी हिफाजत करना आसान होगा।
बिल्कुल, अब सड़क मार्ग से जो उसका सैन्य केंद्र है रुतोग वो सीधे जुड़ जाएगा इस पुल के बनने के बाद। और आप जो कह रहे हैं कि कैलाश हाइट्स पर जो भारत की सेना की कार्रवाई थी उसी की बौखलाहट का नतीजा है कि वो इतने तेजी से ये काम कर रहा है। पेंगोंग के बात करें तो फिंगर 8 तक तो भारत का अधिकार क्षेत्र है जबकि फिंगर 4 तक चीन अपना दावा करता है, और पूरे एलएसी पर ये झील ही भारत चीन के बीच एक जल सीमा बताई जाती है, तो रणनीतिक तौर पर इसकी कितनी अहमियत है?
इसकी काफी अहमियत है क्योंकि जो इसके नॉर्थ बैंक पे 8 फिंगर्स हैं जिन्हें प्रोमिनेंटली फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक कहा जाता है, भारत के अनुसार में हमारा एलएसी फिंगर 8 से जाता है, जबकि चाइना के मुताबिक कभी कभी तो वह फिंगर 4 की बात करता है बट कभी कभी वह फिंगर 2 और 3 की बात करता है। वस्तुतः चीन का जो रवैया है चाहे एलएसी के मामले में हो या बॉर्डर के किसी मुद्दे को सुलझाने का हो वह हमेशा स्थायी नहीं रहता, समय के साथ अपनी सुविधा के साथ वह इसे बदलता रहता है। मौजूदा समय में फिंगर 3 के पास में अपनी पोस्ट है, फिंगर 4 तक अपना एक तरह से कब्जा सा है, लेकिन फिंगर 4 और 8 के बीच में भी हम पेट्रोलिंग करते रहे हैं और जिससे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के हम अपने एलएसी पे अधिकार को जता सकें। लेकिन अप्रैल में 2020 में चीन ने एक तरफ तो अपना जो रोड डेवलप किया फिंगर 4 तक, उसके साथ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और साथ ही साथ ट्रुप्स का भी डिप्लॉय किया। अब क्या है कि जो थल के रास्ते से वहां पे संघर्ष है वो उतना प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहाड़ियों में है और वहां पर कोई मेजर ऑपरेशंस नहीं हो सकते, लेकिन ये जल के माध्यम से इतना बेहतर ऑप्शन है जो भी कंट्री ऑफेंसिव ऑप्शन लेना चाहे, वो कल्पना करिए कि वो 135 किलोमीटर के जल मार्ग पर अपना कब्जा कर सकती है। लेकिन इस जल मार्ग पर कब्जा बनाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कैलाश रेंज पर भी हमारा कब्जा बना रखे ताकि हमने जो प्रगति की इसके माध्यम से हम उसको होल्ड कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो नॉर्थ एंड साउथ की हाइट्स हैं वो हमारी कब्जा में नहीं है और अगर हम जल मार्ग से कोई प्रयास करते हैं तो हमारे इनिशियल सक्सेस के बावजूद भी उसको होल्ड करना मुश्किल होगा।
बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि थल मार्ग के अलावा हमको जल मार्ग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जो अभी तस्वीरें आई हैं और दिखाई दे रहा है कि वो कितनी तेजी से 4 महीने में ही उसने काफी पुल तैयार कर लिया, थोड़ा सा बचा है तो नीचे काफी झील पूरी तरह से जमी हुई दिख रही है। ऐसे में ये भी एक चुनौती है कि जल मार्ग से भी वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। बताते हैं कि जब 2020 में टकराव हुआ उसके बाद से ही उसने यहाँ अपने अस्थायी अस्पताल और कई गोदाम बना लिए हैं। तो उसके इस आक्रामक रवैये से निपटने के लिए भारत को किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है?
वस्तुतः इसको समझने के लिए आपको दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना होगा। पहली बात तो भारत के पास में सियाचिन ग्लेशियर की वजह से और बाकी भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयमेंट की वजह से हाई एल्टीट्यूड में युद्ध करने का या युद्ध जैसी स्थिति में रहने का अच्छा खासा अनुभव है। और इसी की वजह से अभी हमने तकरीबन दो विंटर्स वहां पर काट ली है, फिर भी वेदर की वजह से हमारा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इसके खिलाफ जस्ट देखिए कि चीन में क्या हुआ। वहां ये वेस्टर्न थिएटर के एक साल में तीन कमांडर बदले गए, जिसमें से बताया जाता है कि दो की वेदर के कारणों से डेथ हो चुकी है। साथ ही साथ हर बीतते दिन के साथ में चीन के सेना में जो सैनिक हैं उनको भी वेदर का और हाई एल्टीट्यूड का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है। हालांकि चीन इसको हैंडल करने के लिए मेडिकल सेटअप वहां पे तैयार कर रहा है और साथ ही साथ वहां से लोगों को निकाल जाने की, पीछे ले जाकर के इलाज कराने की भी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वेदर के कारण ही वहां पर उसके तकरीबन 12-14 लोगों की मृत्यु हो गई। तो चीन इस समय एक बहुत भीषण कष्ट से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि उसे हाई एल्टीट्यूड में जो न लड़ने का अनुभव है उसकी वजह से अगर हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें चीन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ चीन का वेस्टर्न तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना नहीं डेवलप्ड है, जिसके वजह से उसके जो ट्रुप्स हैं या जो लॉजिस्टिक्स की चेन है वो बहुत पीछे से आ रही हैं, जिसको भी डिसरप्ट किया जा सकता है। उसके खिलाफ भारत की सेनाएं पहले से ही ईस्टर्न लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉयड हैं और हमारा जो लॉजिस्टिक्स चेन है और हमारा जो एयरफोर्स का सपोर्ट है पहले ही इतना प्रभावी है कि मौजूदा स्थिति में हम चीन से युद्ध करने से घबराएंगे नहीं और हम उससे बेहतर स्थिति में हैं और उसका जो घटना उसने की है उसका जवाब देने के लिए।
बिल्कुल, आपका ये कहना है कि हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने का जो अनुभव हमारे पास है उससे हमें एक अपर हैंड तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी चीन के रवैये पर लगातार नजर रखनी तो बेहद जरूरी है। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।